इशिका आखिरकार उस लड़की से मिलने के लिए पहुंच गई थी जो उसे तलाक लेने से रोक रही थी। इशिका जब उससे मिली तो वो उसे देखते ही पहचान गई थी। उस लड़की का नाम अनन्या था। उस लड़की को देखते ही इशिका को लगभग 2 साल पुरानी बात याद आ गई। 2 साल पहले इशिका उस वक्त हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी पर रिसर्च कर रही थी। उसने 2 दिन पहले वसुधा की जान बचाई थी। रात को देर हो जाने की वजह से इशिका अपनी फैक्ट्री से थोड़ा आगे आकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकी। ड्राइवर ने विंडो डाउन की तो वहां ड्राइविंग सीट पर अनन्या बैठी हुई थी। उसने इशिका से कहा, रात के 1 बज रहे हैं, इस वक्त इस रास्ते पर तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। इशिका ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भर दी और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। गाड़ी में बैठते ही उसने देखा अनन्या लगभग 4 महीने के आसपास प्रेग्नेंट थी। इशिका ने उसके बम्प को देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेट्स, तुम माँ बनने वाली हो। अचानक ही अनन्या के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए मनाया, लेकिन हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि शादी में गवाह तक मौजूद नहीं है। कोर्ट मैरिज के लिए गवाहों की ज़रूरत पड़ती थी। किसी की शादी में विटनेस बनने में कोई रिस्क नहीं था। ये सोचकर इशिका ने कुछ पल रुककर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी में आ जाऊंगी, मुझे विटनेस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ मुझे कब आना है। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? अनन्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें इतना चौंकने जैसा क्या है? इशिका ने पूछा। क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा, एक तो दोस्त थे वे भी हाँ नहीं कह रहे हैं, जबकि तुम तो अभी मुझे मिली हो और मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने अपनी तरफ से सब अरेंज कर लिया है, लेकिन मेरी तरफ से कोई नहीं आ रहा था। सोचा नहीं था कि मेरी शादी हो जाएगी, अनन्या ने जवाब दिया। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे ही बातें करते हुए इशिका का घर आ गया था। उसने अनन्या को थैंक्स कहा और 2 दिन बाद होने वाली अपनी शादी के लिए हाँ कह दिया था। इशिका इस बात से अनजान थी कि वो उस दिन अनन्या की शादी करवाने नहीं बल्कि खुद की शादी अभिमन्यु के साथ रजिस्टर करवाने के लिए जा रही थी। अनन्या को देखते ही इशिका को इतना तो समझ आ गया था कि उसने ही ये सब प्लान किया था। बाहर अनन्या इशिका को कुछ पता नहीं सकती थी। कमरे के अंदर आते ही इशिका ने सीधे सीधे पूछा, तुम्हें देखते ही मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुमने उस दिन अपनी शादी रजिस्टर करवाने के लिए नहीं, मेरी शादी अभिमन्यु राजवंश के साथ करवाने के लिए मुझे वहां बुलाया था। अब बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे बताओ, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? अपना असली नाम भी बता दो। अनन्या की नज़रें झुक गई थीं क्योंकि उसने इशिका के साथ धोखा किया था। फिर उसने कुछ पल रुककर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, मेरा पूरा नाम अनन्या मर्चेंट है। अनन्या का सरनेम मर्चेंट था, इस बारे में इशिका पहले नहीं जानती थी। मर्चेंट सरनेम राधिका का था, तो क्या राधिका और अनन्या एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं? अनन्या ने आगे बताते हुए कहा, मैं राधिका मर्चेंट की रिलेटिव हूँ, फिलहाल के लिए यही जानना तुम्हारे लिए काफ़ी है। एक बात याद रखना इशिका, ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी नहीं है। अब तक वे लोग इस बात से अनजान थे कि तुम ही राधिका सिंघानिया की बेटी हो, इसलिए तुम सुरक्षित थीं, लेकिन अब सच सामने आ गया है। ऊपर से तुमने सबके सामने अभिमन्यु से तलाक लेने की बात भी कह दी है, वो तुम्हारी शील्ड की तरह है और तुम अपनी शील्ड तोड़ने जा रही हो। राधिका की जिंदगी से बहुत सारे राज जुड़े हुए थे, इशिका ने जानना भी चाहा, लेकिन राधिका के मना करने पर उसने जोर भी नहीं दिया। अब अचानक से राधिका के साइड से कोई रिलेटिव आ गया था। इशिका उसकी पूरी बातें गौर से सुन रही थी। अनन्या की हालात देखकर उसका मन कर रहा था कि वो उस पर यकीन कर ले, लेकिन अनन्या ने उसके साथ धोखा किया था। इशिका ने अनन्या की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, देखो पहले तुम मेरे साथ धोखा कर चुकी हो तो मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे इरादे भी नेक हैं। इतना तो तुम जानती हो कि मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, मेरी एक बेटी हुई थी, अनन्या ने बताया। और फिर अपना मोबाइल निकालकर उसने अपनी बेटी की फोटो दिखाई जो लगभग 2.5 साल के आसपास थी। अनन्या अपनी बेटी को लेकर बहुत इमोशनल हो रही थी, कोई भी अपनी बेटी की कसम झूठी क्यों खाएगा? ये सोचकर इशिका ने अनन्या की बात पर यकीन करते हुए कहा, तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता भी नहीं रही हो, ये तो बता ही सकती हो कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ही राधिका सिंघानिया की बेटी थी। क्योंकि जो तुम्हारा भला चाहते हैं वे पहले दिन से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। अब मेरी बात मानो और प्लीज अभिमन्यु से तलाक मत लो, अनन्या ने काफी रिक्वेस्टिंग में कहा। उसकी बात सुनकर ऋषिका के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और अनन्या को एक मैसेज दिखाते हुए कहा, यह अभिमन्यु का मैसेज है और उसने आज 2 बजे मुझे कोर्ट आने को कहा है। कल वो खुद तलाक ना लेने के लिए उल्टे सीधे बहाने बना रहा था, लेकिन लगता है उसने खुद को तैयार कर लिया है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे तुम दोनों फिर से करीब आ सको? अनन्या ने मायूसी से पूछा। ऋषिका ने ना में सिर हिला दिया था। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अचानक अभिमन्यु को क्या हो गया था। ऋषिका अनन्या से बात कर रही थी तभी उसका मोबाइल बजा था। उसे लगा कि अभिमन्यु ने अपना मन बदल लिया होगा, लेकिन वो राधिका का मैसेज था। उसने पूछा था, अच्छा ऋषिका, आज तुम्हारे हैंडसम अंकल से मिलने के लिए जाना है, मुझे बताओ कि तुम कब तक निकलने वाली हो? माँ, मुझे टाइम लगेगा। आप ऐसा कीजिए कि रेस्टोरेंट पहुंचिए, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, वो रूम नंबर 8 में है, ऋषिका ने जवाब दिया। ठीक है, फिर जल्दी आ जाना, राधिका ने कहा। राधिका तैयार होने जा रही थी, इसलिए उन्होंने पहले ऋषिका को मैसेज करके जाने के टाइम के बारे में पूछा। राधिका को जवाब देने के बाद ऋषिका ने ऊपर देखा तो अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कोशिश करूंगी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सकूं। ऋषिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अनन्या को हक किया और फिर अलग होकर कहा, बाद में मिलते हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। एक दूसरे से बात करने के बाद ऋषिका और अनन्या एक साथ उस कमरे से बाहर निकली। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु कोर्ट रूम के पार्किंग लॉट में खड़ा पृथ्वी के आने का इंतजार कर रहा था। पृथ्वी के आते ही अभिमन्यु जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा, मैंने तुमसे जो सामान मंगवाया था वो तुम लेकर आए हो ना? मैं सब कुछ लाया हूँ, लेकिन आपने उन्हें 2 बजे का टाइम दिया था और अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। उसने आज से पहले अभिमन्यु को इस तरह नहीं देखा था तो उसे हैरानी हो रही थी। बकवास बंद करो और जो काम बोला है वो करो, अभिमन्यु बोला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी ने आइस रोल की और फिर 2 बॉक्स लाकर अभिमन्यु के सामने रख दिए थे। वो बोला, मैंने उनसे जब ये सामान खरीदा था तो उन्होंने कहा कि वे खुद आपकी गाड़ी को तैयार करके दे सकते हैं, बस आपको गाड़ी उन तक पहुंचाना थी, लेकिन मुझे उसके लिए सब कुछ अपने हाथों से करना है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु बॉक्स खोलने लगा। उसके अंदर रेड और व्हाइट कलर के बलून थे। उसने बलून फुलाने वाला पंपिंग मशीन निकाला और उन्हें उससे फुलाने लगा। उसने साथ में एक यूट्यूब वीडियो खोल रखा था जिसमें देखते हुए अभिमन्यु उसके हिसाब से ही गाड़ी को डेकोरेट कर रहा था। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी।
अभिमन्यु मन ही मन बोला, ऋषिका इसे देखेगी तो जरूर एक्साइटेड हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप की है, सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होने वाली। हाँ, हो सकता है कि उसे इन सब से खुशी मिले। कुछ बलून फुलाने के बाद में उसने बंच बनाया और फिर उन्हें गाड़ी से बांध दिया था। फिर अभिमन्यु ने अपने जैकेट से उस अंगूठी को निकाला, वो उसे ऋषिका को पहनाने वाला था। अभिमन्यु सब कुछ काफी एक्साइटेड होकर कर रहा था। पूरी अरेंजमेंट करने के बाद उसकी नजर ड्राइवर और पृथ्वी की तरफ पड़ी जो उसे घूर कर देख रहे थे। अभिमन्यु से उनकी नजर मिलते ही दोनों ने अपनी आंखें नीची कर ली थीं। पृथ्वी ने बिल्कुल धीमी आवाज में ड्राइवर से कहा, ये सच ही है ना? कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? मिस्टर राजवंश के चेहरे पर स्माइल है और वो किसी के लिए रोमांटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो इंसान दूसरों को डांटता रहता है वो प्यार से किसी के आने का इंतजार कर रहा है। हाँ, पहले मुझे भी यही लगा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सच है। अच्छा है ना कि यहाँ हमारे कंपनी के बाकी लोग नहीं हैं, वरना मिस्टर राजवंश को ऐसा देखने के बाद वे उनसे डरना छोड़ देते, ड्राइवर ने जवाब दिया। अभिमन्यु समझ गया था वे उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और धीरे से कहा, कमऑन, अब उसे थोड़ी ना डांटने वाला हूँ, वो मेरी वाइफ है तो उसके लिए ये छोटी मोटी अरेंजमेंट तो कर ही सकता हूँ ना। अभिमन्यु ने उन्हें इग्नोर किया और गाड़ी में आकर बैठ गया था। वो ऋषिका के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राधिका ऋषिका की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई थी। अंदर आते ही उसने इधर उधर देखा और अपने मन में कहा, मुझे ऋषिका का इंतजार करना चाहिए या नहीं? उसने बताया था कि उसने अपने हैंडसम अंकल से मेरा जिक्र किया है, तो क्या वो मुझे जानते होंगे? ऐसे गेस्ट को इंतजार करवाना अच्छा नहीं होता, मुझे उन्हें वेलकम करने जाना चाहिए। अपनी उधेड़बुन में खोए हुए राधिका ने ऊपर जाने का फैसला किया। उसने लिफ्ट ली और रूम नंबर 8 में जाने लगी। राधिका रूम के पास पहुंची और उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। वहीं कमरे के अंदर केशव ऋषिका के आने का इंतजार कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुलते ही राधिका और केशव एक दूसरे के आमने सामने थे। वे लगभग 23 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखकर बुरी तरह चौंक गए थे। इतने सालों बाद भले ही दोनों ने एक दूसरे को देखा है, लेकिन केशव का चेहरा वैसा ही था जैसा राधिका ने अपने ख्यालों में सोचा था। दोनों बिना पलकें झपकाए एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक कि अरमान ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। उसने हल्का खांसते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरमान के बोलते ही केशव और राधिका को होश आया। राधिका समझ गई थी कि केशव ही वो इंसान था जिसके बारे में ईशिका उससे बात कर रही थी। राधिका ने अपने मन में कहा, केशव ने मेरी ईशिका को देख लिया है, इसका मतलब वो पहचान गया होगा क्या कि ईशिका उसकी बेटी है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, कहीं केशव मुझे मेरी बेटी को अलग ना कर दे। गुस्से से राधिका की मुठियां कस गई थीं। राधिका केशव को कुछ कहती उससे पहले उसका मोबाइल बजा, वो कॉल कट कर देती, लेकिन ये कॉल ईशिका की तरफ से आया था। राधिका तुरंत दूसरी तरफ पलटी और उसने कॉल रिसीव किया। सामने से एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस आई, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, लोकेशन भेज रहे हैं, उसकी लाश लेने पहुंच जाना। जैसे ही राधिका ने ये सुना उसके कदम लड़खड़ा गए थे, उसने जल्दी से दरवाजा पकड़ा, उसे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला और सामने से कॉल कट हो गया था। राधिका ने कॉल बैक किया तो नंबर बन जा रहा था। कॉल कट होते ही उस इंसान ने ईशिका की लोकेशन भेज दी थी। उसने लोकेशन देखा तो उसका दिल डूबा जा रहा था, ये समुद्र के बीचों बीच की लोकेशन बता रहा था। अचानक राधिका को इस तरह परेशान देखकर केशव उससे बात करने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। राधिका ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कहा, हेलो, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्होंने मुझे एक लोकेशन भेजी है, मैं आपको वो सेंड करती हूँ, प्लीज जल्द से जल्द वहां पहुंच जाइए, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। राधिका ईशिका को कुछ होने के ख्याल भर से ही कांपने लगी थी। राधिका तुरंत वहां से निकलने लगी। उसकी बात सुनकर केशव बुरी तरह घबरा गया था। वो जल्दी से उसके पास आकर बोला, क्या हुआ राधिका? ये वक्त राधिका का केशव से लड़ने का नहीं था, केशव की पोजीशन काफी हाई थी, इस मामले में वो उसकी मदद कर सकता था, इसलिए राधिका ने जल्दी से कहा, किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। इसी के साथ केशव और अरमान तुरंत हरकत में आ गए थे। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाया और उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल गए थे। बदकिस्मती से वो जगह भी काफी दूर थी, लगभग एक घंटे पहले। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज तैर रहा था, उसकी हालत ऐसी थी कि वो अगले ही पल डूब जाएगा। उस जहाज के बाहरी हिस्से में हथकड़ी से अनन्या और ईशिका बंधी हुई थीं। इस वक्त दोनों ही बेहोश थीं और इस बात से अनजान कि अगले ही पल वे दोनों जहाज के साथ डूबने वाली थीं। दूर दूर तक उस जहाज के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था।